और इस हिस्से की अहम तरीन आयत आयत 43, अरअईत मन इत्तख़ज़ इलाहहू हवाहू अफअन्त तकूनु अलैहि वकीला, और क्या आपने इसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए है, क्या आप इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, क्या आप इसी ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं, वो तो निरे चौपायों जैसे हैं बल्कि इनसे भी ज्यादा भटके हुए। जरा से इस पे गौर करते हैं। यहाँ देखिए नफ्स की बात आ गई। 13वें पारे में हमने पढ़ा वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, लंबी बात हो गई इसमें। इस सारे आयत से पता चलता है कि दुनिया में अल्लाह के माँ सिवा बहुत से माबूद हैं, और उन सारे माबूदों में बदतरीन माबूद नफ्स। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिसाल दे रही हूँ, हदीस कोट नहीं करवा रही, लेकिन मफहूम क्या है कि किसी के घर कोई मेहमान आए और मेज़बान उसकी बड़ी खातर करे, बड़ी खिदमत करे, बहुत उसका ख्याल रखे, और वो बाहर जाकर उसकी बुराई करे या बिगाड़ का शिकार हो, तो तुम उसके बारे में क्या कहोगे? मिसाल दी आपने, मैंने भी अपने लफ्जों में दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनकर सहाबा ने कहा, वो तो बड़ा ही बुरा शख्स है, यानी ऐसा मेहमान क्या करना है कि जो बेचारे मेज़बान की हर नेकी और खैर को पीछे डाल दे। तो फरमाया, तुम्हारा नफ्स ऐसा ही मेहमान है, तुम इसकी जितनी इज्जत करते हो, जितनी खातर करते हो, ये उतना सर पे चढ़ता है। तो लिख लीजिए, नफ्स एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह होता है जिसको स्पॉइल्ड किड्स कहते हैं। हमेशा अपनी हर बात पूरी कराना चाहता है जैसे बच्चे कराते हैं। शुरू में जायज़ चीज़ों को बुरा करवाने पे आपको माइल करता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर नाजायज़ भी मनवाएगा, और एक दिन आएगा कि आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर देगा। कभी किसी के घर जाए और उसका बच्चा बिगड़ा हो ना, तो आपको तो गुस्सा जो उस पर आता है जो उसकी माँ को आ रहा होता है अपने बच्चे पे, क्योंकि मेहमान के सामने बनी हुई सारी इज्जत ज़ाया कर दी। तो लिखिए, अगर आप और मैं अपने नफ्स का इलाज करना चाहते हैं तो क्या करें? कभी कभी इसे हलाल चीज से भी रोक लें ताकि ये ठीक हो, सीधा जायज चीज से भी रोक लें, जो करने में कोई हर्ज ना उसको उससे भी रोक लीजिए, क्योंकि इससे फिर उसके अंदर बर्दाश्त पैदा होगी। तो नफ्स को ना हर वक्त टेम ना किया करें, कभी वो करें जो नहीं दिल का रहा, खा लेगा वो चीज जो नहीं खाते हैं, क्या होगा? है तो पहन ले, नहीं है तो ना से। कभी फटे हुए कपड़े पहन लें, कभी पैबंद लगे पहन लें। कल एक स्टूडेंट थी, एडमिन भी है साथ, रम में उनसे मुलाकात थी, तो तवाफ में मुझे मिली ऊपर ना, तो खैर बातों ही बातों में मुझे कहने लगी, साहब आपको वो परस किधर है जिसकी आप मिसाल देती हैं? मुझे समझ आ गई कि ये सुनती है। मैंने कहा, वो बरस तो यहाँ मेरे हाथ में नहीं, ये थैला है। इत्तफाक देखिए, वो बैग मुझे इतना इजी लगता है, मैंने उससे पहले सुबह ही देखा उसका एक कोना भी फटा हुआ था, उसके नीचे का वो प्लास्टिक चमड़ा भी उतर गया। मैंने कहा, वो तो इधर नहीं, वो तो कहीं चला गया होगा, और ये है मेरे हाथ में। कहती, आप ये मुझे दे देंगी? मैंने कहा, आप नया ले लें। कहती, नहीं मैंने ये लेके जाना है। मैंने कहा, आपका वो ले लें, जो कुछ इसमें ये सब आपका। मुझे तो ख्याल भी नहीं आया उससे कहने से पहले, जब दे रही थी तो शर्म आ रही थी कि ये तो दो तीन जगह से उधड़ा पुधड़ा, तो मैंने आज फिर भी आते हुए यही क्यों पकड़ा, क्योंकि आई फील ही सी, मैं क्यों इतना हैवी मुश्किल और इतना महंगा बैग या एक नया बैग पकड़ के सफर करूं या तवाफ में फिरूं जिससे मेरी जान उसी में पड़ी रहे। ये भी याद रखिए, जितने आप आला कपड़े जूते और जेवरात और इसमें रहते हैं ना, तो फिक्र उसकी पड़ी रहती है। या तो आप कहते हैं, चलो अच्छा कोई बात नहीं नया ले लेंगे, या फिर वो इजी कोई रिलैक्स्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे कपड़ों को कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, मैं इजी फील करूंगी। ये नफ्स को काटने के जरिए होते हैं। एक दिन आपके 10 चीजें खाने की, अगले दिन नहीं है तो नासिक, हाय जल्दी भागो जल्दी लेके आओ। एक दिन आपके बेस्ट ब्रांडेड चीज है, दूसरे दिन आपके बेकार चीज भी कोई नहीं है, ही कुछ नहीं। इस नफ्स को ना ये तरबियत देने के तरीके होते हैं। देखिए, पैसा फेंक तमाशा देख, किसके पास नहीं होता, पर क्यों? तो कभी कभी हफ्ते में एक दिन फ्रिज का सारा बचा हुआ खाना खाए, कोई एक साबुन की टिकिया आखिरी दिन तक रगड़ रगड़ के, जबकि वो बिल्कुल ना नजर आने वाली ना हो जाए, उसको ना छोड़ें। इससे आपके बच्चे सीखेंगे, आज एक टिश्यू की जगह 4 टिश्यू बच्चे पकड़ते हैं आपके। फ्रिज आपकी बंद नहीं हो रही, फ्रीजर आपका उबल रहा है, फिर भी बच्चे कहते हैं, मॉम नथिंग टू ईट, मैं क्या खाऊं? आंखों पर चर्बी चढ़ गई। ये एक दो दिन में मुझे एक दफा अपने वालिद पे इतना प्यार आया, एक खास चीज याद करके बचपन की, कि उन्होंने हमारी तरबियत में ये चीज डाली, तो आज वो कहते हैं मोटे से भी गुजर जाते हैं, पतले से भी गुजर जाते हैं, चलना पड़े चल भी लेते हैं, बैठना पड़े बैठ भी जाते हैं, परवाही कोई नहीं, मजदूरों का तरीका है जिंदगी। क्यों मैं आपके सामने इतनी रोब वाली बन के बैठूं, मेरे अंदर ये मेरी ये खूबी मेरी वो खूबी। तो बच्चों की तरबियत में इस नफ्स को पहले ही दबा, और ये सारा पहले होगा। आप रोटी को एक खास वक्त तक जब दबाते हैं तो फूलती है, घर की रोटी तो आप सारे इतनी अच्छी अच्छी बनाते हैं माशाल्लाह, जरा रोटी सख्त हो जाए तो फिर आप ऊपर चिमटा लगाएं या कपड़ा लगाएं, नहीं फूलती। बचपन में नफ्स को दबाएं, अपने बच्चों और अब बच्चों के बच्चों को एक आंख से घूरें, एक से देखें। ये जो हर वक्त एक वही बात है कि कंज्यूम करो कंज्यूम करो, ये भी खर्च करो, पैसा तो जो ले आओ, ये तो अकड़ होती है। मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मेरे इस वजूद के ऊपर जिसकी खूबी कोई नहीं, मैं कैसे सैकड़ों और हजारों लाखों लगा दूँ। तो नफ्स दबेगा इंशाल्लाह, करके एक एक कदम पीछे आइए। यानी तैयब खाना चाहिए, लेकिन अगर लगे भी ना कि खाना 2-3 दिन से पड़ा हुआ है फ्रिज में, शायद ठीक ना रहो, खा ले। उस दिन टेस्ट के लिए नहीं खाएंगे, उस दिन इस नफ्स के बच्चे को कहेंगे खाओ, खाना है तो यही खाना है, और नहीं खाना तो यही खाना है। ये एक बेहतरीन पेरेंटिंग का सूल है। देखिएगा, आपको दुआएं देंगी आपकी बेटियां। आज जाते ही ससुराल में झगड़े क्यों शुरू हो जाते हैं, मसले क्यों शुरू होते हैं? माँ बाप ने हाथ की हथेली का छाला बना के पाला, वहां सास को क्या लगे? और सासे बुरी नहीं होती, लेकिन हालात ही ऐसे। इधर तो आप 9-10 बजे तक सो के उठे ना, आपकी मर्जी अपनी जिंदगी, उधर शौहर उसको काम पे भेजना है, उसके नाश्ते पानी का इंतजाम है, आपकी लाडली की आंख नहीं खुल रही, वो बेचारा मियाँ उसका जो है वो ख्वाब देख रहा था कि जब शादी होगी तो चलो मुझे भी वक्त पे खाना मिल जाएगा, अकेला रहता था। ये मसले होते हैं। आज की अक्सर चीजें इस नफ्स को फुलाने वाली हैं। तो बहरहाल बच्चों को तबाहिए, तो शऊर से जरा ये दुआ कर लेते हैं अपने माँ बाप के लिए, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा अग्फिर लहू वरहमहू वाफिही वाफु अन्हु वकरिम नुज़ुलहू वबस्से मुदखलहू वअब्दिलहु दारन खैरा मिन दारहू वअहलन खैरा मिन अहलहू वज़ौजन खैरा मिन ज़ौजहू वअदखिलहुल जन्ना वअस्कू मिन अज़ाबिन नार। आखिरी बात कह देती है इस बारे की, आप सब ने मुहावरा सुना होगा कि बड़े की बात और आंवले के अचार का फायदा बुढ़ापे में दिखता है, पक्की बात है। चलिए आगे देखिए, कायनात भी कुछ चीज़ों को निशानी बनाकर, या फिर ये पूरी सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है। मेरा तो दिल कर रहा मैं इसको बस इंजॉय कराऊँ, और ख़ुद भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जितना भी नसीब में है फिर भी बहुत दफ़ा पढ़ेंगे बाद में। अलम तरैला रब्बी का कैफ मद्दिल, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साए को किस तरह फैला दिया? अगर चाहता तो इसे ठहरा हुआ ही कर देता, फिर हमने आफ्ताब को इस पर दलील बनाया, फिर हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लिया, और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नींद को राहत बनाई और दिन को खड़े होने का वक्त, और वही है जो बारान रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं ताकि इसके जरिए से मुर्दा शहर को जिंदा कर दें, और इसे हम अपनी मखलूकात में से बहुत से चौपाएं और इंसानों को भी लाते हैं, और बेशक हमने इसे इनके दरमियान तरह तरह से बयान कर दिया ताकि वो नसीहत हासिल करें, लेकिन फअबा अक्सरुन्नासी इल्ला कुफूरा, मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिवाय नाशुक्री के माना ही नहीं। ये था नबी के इर्द गिर्द वालों का रवैया। अल्लाह ने कायनात की कहानियां या मिसालें दे के नबी को तस्कीन दी है कि आपके साथ करीब वाले जो है ना शुक्रे हैं, ये काफिर नहीं बोला कफूर, इनको इतनी बड़ी नेमत नहीं दिख रही, अल्लाह ने इनको नेमत दी क्या? अल्लाह ने अपना वो नबी इनके पास भेजा जिसकी दुआएं पिछले अंबिया कराम ने मांगी। पिछली उम्मतें ख्वाहिश करती थी कि हम इस नबी की उम्मती होते, पिछले अंबिया दुआ करते थे, रवायतों में आता है कि अल्लाह तुम्हें नबी ना बनाता, हाँ मोहम्मद का उम्मती बना देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज आप पर मैं उस नबी के उम्मती हैं। बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। वलौ शिना लबअसना फी कुल्ली क़रिया, अगर हम चाहते तो हर हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते, बस आप कुफार का कहना ना माने और क्या करें, इसको हाईलाइट कीजिए, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, और इस कुरान के जरिए इनसे पूरी ताकत से बड़ा जिहाद करें। ये था जी वेपन टूल हथियार, जो बड़ी मुश्किल से मुश्किल है बोल सकूं बोल देती हूँ, जिसके जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जिहाद किया। आमतौर पे लफ्ज जिहाद जब आता है तो हमारे जहन में तीर तलवारें और इस तरह के वेपन्स आते हैं, आज के दौर में कुछ और इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब और जो भी चीज़ें होती हैं, याद रखिए कि हथियार मकसूद नहीं होते, उसका इस्तेमाल और उसके साथ जो बातें हैं उसको देखा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की जिंदगी में जो बहुत बड़ा तोहफा दिया गया, जो के लोगों के लिए कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा टूल साबित हुआ हिदायत की तरफ आने का, वो कुरान था। आयत का नंबर लिख लें, जाकर किसी मुफस्सर की तफसीर खोल लीजिए, बहुत सारे हैं माशाल्लाह। सलफ सालेहीन के तो 30-35 तफसीरें मेरे अपने पास भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास भी होंगी। उर्दू की खोल लें, इंग्लिश की खोल लें, और सिर्फ इस एक आयत की तफसीर पढ़ लें, तो आपको मिशन रिसालत नबी सल्लम का तरीक़ाकार समझ आ जाएगा, मेथडोलॉजी समझ आ जाएगी, और आज के दौर में मुसलमानों को क्या, कब, कहाँ, कैसे करना है उसका तरीका इस आयत की रोशनी में मिलेगा। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी याद है, मैनचेस्टर से एक दफा मैंने लेक्चर इन्हीं आयतों को यूज किया, कुरान के 5 महाज। महाज तो समझते ना, दुश्मन से लड़ते हैं। एक बंदा जब कुरान पढ़ के निकलता है ना, जैसे आप में से कोई कुरान पढ़ता है तो आपके सामने 5 बड़े महाज हैं, वो खुल जाते हैं, और उन 5ों महाजों पे इंसान ने इस कुरान के साथ काम करना है। सबसे पहले तो आपका अपना नफ्स, फिर खानदान, फिर फिरका वारियत, फिर जात बिरादरी, फिर कई कुछ, उसमें बहुत कॉम्पैक्ट लेक्चर है, अगर आप सुन सकें तो आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। और उसमें क्या है कुरान, क्या देखिए, जिहादन कबीरा, फईल का वजन है, मुस्तकिल भी है, मिशन रिसालत मुस्तकिल है, रिसालत खत्म हो गई, कार्य रिसालत नहीं खत्म हुआ, अभी काम बाकी है, मुस्तकिल करना होगा। ये सिर्फ रमजान तक नहीं रहेगा, दौरे कुरान तक नहीं रहेगा, ये आखिरी 10 दिन भी चलेगा, उसके बाद भी होगा। तो बड़ा जिहाद से मुराद क्या, बड़े पैमाने पे जिहाद कीजिए, और बड़े काम अकेले नहीं होते, टीम के साथ होते हैं। आपको अपने नफ्स से जिहाद करना है, आपको शैतान से जिहाद करना है, आपको मुआशरे से जिहाद करना है, आपको सियासी निज़ाम से जिहाद करना है, आपको जो कुफार मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं, जो परसिक्यूशन कर रहे हैं, जो फितने खड़े कर रहे हैं, जो उनकी जान माल को ले रहे हैं, जैसे तकरीबन 1.25 साल हो गया गजा की जंग सुनते, सीरिया के हालात सुनिए, बर्मा के सुनिए, यमन में क्या हो रहा है, इन सारे जिहादों में सबसे बड़ा काम जिहादन कबीरा आप कुरान के साथ करेंगे। जो कुरान के जरिए हिदायत पा जाएंगे, हत्ता यस्मो कलामुल्ला, सूरह तौबा में हम पढ़ के आए हैं, तो बिस्मिल्लाह, फइख्वानुकुम फिद दीन, तुम्हारे भाई हैं दीन के, बल्कि का यश भी सुदूरुल मोमिनीन, मोमिनों के सीने ठंडे होंगे। ये काम आज कर रहे हैं दावा वाले लोग, जो नॉन मुस्लिम मुल्कों में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारा सा इंस्टीट्यूट, इनकी भी मेन थीम दावा ही है, कुरान को आम करो, इस्लाम को लाओ। आज बड़ी बड़ी बातों की जरूरत क्या है, आप तो लोगों को कुरान पढ़ते हुए उसका तर्जमा ना समझ आए, आपको दूसरी बातों की क्या जरूरत है। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया था, आपको मुझे भी यही करना है। जो कुरान से ना माने ना, फिर हुज्जत, फिर दलील, फिर उसका अगला स्टेप मुबाहले, फिर मनाजरे, फिर आखिर में नहीं मानते, पकड़ो जाओ मैदान जंग में चलो, फिर तिलवा, फिर कत्तिल कुत्तिल तकतील, फिर सूरह तौबा पढ़ी, आगे देखे सूरह असाब आएगी, फिर सूरह मोहम्मद आएगी, सूरह फत आएगी, और सबसे बढ़ के सूरह हदीद में किताल किताल किताल, ना इसकी वजह से वो छोड़ना है, ना उसकी वजह से ये छोड़ना है। अब दुश्मन गए आपके बच्चों को मारे हैं, तो आप जाके उनको कुरान सुनाएंगे, वहां तबलीग करेंगे, कितनी बेतुकी बात है। और एक आपके साथ आ रहा है कि वो कहता है मुझे दीन के बारे में कुछ बताओ, तो क्या तलवार से उसको पहले काटेंगे, उसकी गर्दन अलग करेंगे, क्योंकि जी कहा है कुरान ने, जहां इनको पकड़ो इनको मार दो। तो आज मुसलमानों को तरतीब नहीं पता, ये स्टेप्स हैं, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और जिहाद अपने नफ्स से पहले शुरू होता है, फिर मुआशरे करते 10 स्टेप, आखिर में फिर ये दुश्मन जो अल्लाह के दीन के उनके साथ है। ये था मिशन रिसालत, 13 साल सहाबा की टीम तैयार की, 100 कुछ लोग तैयार हो गए, तरबिया हुआ, तज़किया हुआ, ईंटें बने, जैसे शुरू में आज बात की है ना आपके साथ कि ऑन साइट क्लासेस में तज़किया क्यों ज्यादा होता है, कि इधर चैलेंजेस बहुत से होते हैं, देर सवेर होती है, मुश्किल पड़ती, कभी गेट नहीं खुला, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ, ठुके हुए अबू बकर, ठुके हुए थे उमर, ठुके हुए थे उस्मान अली, ठुके हुए थे। और तहदीस नेमत पे कह दूं कि लफ्ज़ नूरुल कुरान बाद में बना हमारे इंस्टीट्यूट का नाम, पहले तो ये सिर्फ एक कुरान क्लास के नाम पे आता था, पेल टॉक पे, उस वक्त के जो साथी हैं इस वक्त पूरे नूरुल-कुरान की बैकबोन है। अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत दे, उनकी फैमिलीज को बरकत दे, और उस काफले में जो अब नए से नए लोग शामिल हुए हैं ना, जिसने भी इस कुरान के पैगाम को लिया, अल्लाह का शुक्र है वो एक सिपाही बन के अपने अपने महाज, अपने इलाकों, अपनी जगहों में इस कुरान को फैला रहा है। इससे बढ़कर और कॉन्ट्रीब्यूशन आज के अंधेरों में क्या होगा कि आप कुरान के नूर को फैलाइए। जो हम कर सकते हैं वो तो करते नहीं, सो के तो हम उठते हैं आधे दिन के बाद, रातें इबादत में गुजरती है हमारी, हैरत होती है मुझे, चक्कर पे चक्कर, दौड़ों पे दौड़े, वहां भागते हैं तो रोजे पे जाना चाहते हैं, इधर आते हैं तो तवाफ पे तवाफ, उम्रे पे उम्रा। बड़ी खुशी की बात है, मुझे भी मौका मिले तो मैं हर रोज उम्रा कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रूह नहीं है, कुरान क्लास नहीं, वो तो इबादत कर रहे हैं ना, ये तो क्लासें तो हम कहीं से भी ले लेंगे, ये है मसला। जितने शौक से जौक से इस वक्त लोग सऊदी अरब में, मक्का में आए हैं, मदीना में तो भी नहीं देखा मैंने रमजान में, मक्का में इस वक्त जितने आए हैं, इससे ये तो पता चलता है कि उम्मत को अल्लाह से प्यार है, अपनी फिक्र है, अपनी तड़प है, लेकिन कुरान मिसिंग है। हरम में इस वक्त अगर मैं भी 40-50 लाख लोग हैं, तो उनमें से कितनों को उस वक्त तरावी में समझ आ रही होती है और वो रो रहे होते हैं जो इमाम साहब पढ़ रहे होते हैं। ये आज आपका मेरा गोल है, आज लेके उठिएगा यहाँ से, आप गली गली ये पैगाम दीजिए, जहां तक मैसेज देते हैं कि लोगों आओ इस कुरान को पढ़, और रूह के बगैर कुरान का फायदा कोई नहीं होता। जैसे अभी अल्लाह ना करे बिजली जाती तो इधर नहीं लगी, ये देखिए माइक बंद हो गए, आप खुल गए, ये रूह है, ये जैसे बिजली है ना, इस तरह इस कुरान को लेकर चलिए और दुआ कर ले, अपने लिए भी और आपके लिए करने लगी हूँ दुआ, दिल चाहे तो आमीन कह लें। अल्लाह इस सदी में आपको मुझे इस कुरान की खिदमत के लिए चुन ले। आज के दौर के वो लोग जो इस कुरान के नूर को फैला रहे हैं ना, बड़ा मुकाम है, जिस तरह वो मुजाहिदीन जो सरहदों पे खड़े हिफाजत कर रहे हैं ना कि दुश्मन आया तो उसकी आंख फोड़ देंगे, इसी तरह ये दीन की नजरियाती सरहदों की हिफाजत कौन करते हैं। पीछे सूरह तौबा में आपने मोमिनीन की सिफात में क्या पढ़ा कि वो हाफिजून अली हुदूद इल्ला, तो इल्म के साथ वो दीन की हदें आप उसकी हिफाजत करते हैं। आज जितना गंद दुनिया में फैलाया जा रहा है न्यूडिटी के नाम पे, लेस्बियनिज्म के नाम पे, उसके मुकाबले में इस इल्म को आम कीजिए। हमारे अपने मुसलमान बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता था कि कौम लूत का इतना तذکرہ कुरान में है, तो आप इस इल्म को आम कीजिए ताकि बच्चियों की इज्जतें बच जाएं, बेटों की आंखें पाक हो जाएं। यगुद्दु मिन अबसारिहिम, बेटों को सिखाइए कि बेटा गैर लड़की को नहीं देखते, अपनी माँ बहन को भी नहीं देखते, नजरें झुका के बात करते हैं। अब आगे देखिएगा तकाबुर, अब सूरह फुरकान, नाम फुरकान है ना, फर्क क्राइटेरियन, तो दो मुख्तलिफ चीजें, और जरा से कॉन्शियस हो जाए ससुराल का नाम आने वाला है, सीधी हो जाए, सास की बात सुन के तो नींद से भी उठ जाए, जी अम्मी जी अम्मी, खौफ करते हैं ना, हालांकि बड़े प्यार के रिश्ते होते हैं, तो जरा सा सुनिए। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन, और वही है जिसने दो समंदर आपस में मिला रखे हैं, ये है मीठा और मजेदार, और ये है खारी कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक हिजाब और एक मजबूत ओट कर दी। वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसे नसब वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया, बिला शबाब का परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। ससुराल का नाम आके गुजर गया, दो तरह के रिश्ते, नसबन व सेहरा, जरा से इस पे बात करते हैं। आप देखिए कि हम अपनी माँ को पसंद करते और शौहर की माँ के बारे में जरा सा इस तरह रखते, शौहर की माँ को हमारी सास और हमारे बच्चे की दादी कहते हैं। देखिए माँ का सहर बच्चे का नसब है, नया जुमला दे रही हूँ आज इस आयत के साथ, पहले नहीं कभी दिया। आप कहते हैं ससुराल की खिदमत करना फर्ज है, जी, बहू सास की खिदमत जरूर करें, कहाँ लिखा है, ससुर की किधर लिखे है, उसको छोड़ दीजिए एक लम्हे के लिए, कहाँ लिखा है नहीं लिखा उसको पीछे कर दीजिए, क्योंकि लिखा भी हो तो आपने करना वही है जो आपका दिल करेगा। याद रखिए आपका ससुराल आपके शौहर की जन्नत है, आपकी सास आपके शौहर की जन्नत है, आपका ससुर आपके शौहर के जन्नत का दरवाजा है, और आपके सास ससुर आपके बच्चे के दादा दादी हैं, ज़विल अरहाम ददियाल वाले होते हैं। इन रिश्तों का एहतराम कीजिए, शादी के गानों से लेके इंडियन फिल्मों के गाने टप्पों में से सब में से ना एंटी ससुराल स्टफ निकाल कर फेंक दीजिए। लड़की को शादी से पहले ही आप इन लोगों से खिलाफ करके भेजते हैं, और सास को पता नहीं क्या कहते हैं और नंद को पता नहीं क्या कहते हैं। खानदान एक बच्चे की शख्सियत बनाता है। अगर आपको अपने ससुराल में कुछ मसला है, या आपको अपने घर आई भी बहू से कोई मसला है तो थोड़ी सी अमेंडमेंट्स कर लीजिए। नंबर एक, लेने की बजाय देने वाला मिजाज बना लें। कठोर से कठोर ससुराल में आपकी जगह बन जाएगी, पक्की बात है। अपने बेड सेट्स निकाल कर दीजिए नंदों को, एक जोड़ा दीजिए जरा बहन, आप पहन लीजिए। सास को कि अम्मा ये चादर आप पे सजेगी, देखिए जरा अम्मा कैसा खुश होती है। इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए, दिल बड़ा कीजिए। जुबान छोटी, दिल बड़ा कर ले। ससुराल जैसा भी हो, बंदे की इज्जत बन जाती है। फिर इसी तरह बहू को जिस नजर से देखते हैं ना, उसी से अपने बेटे को देखिए जब वो दामाद बनता है। हमारा हाल ये कि बेटा अपना और ससुराल में जाके जरा सा काम कर देगा तो तुम्हें क्या हो गया, घर दामाद बन गए। ये तुम अपने ससुराल को कहाँ ले लेके फिर रहे हो, गलत। अगर किसी की बेटी आपकी खिदमत करे तो आपका बेटा अपने ससुराल की क्यों ना करे। तो लिखिए वी हैव टू रिस्पेक्ट, बस यही चंद चीजें हैं। इस पे लेक्चर है एक, मेरा दिल कर रहा है आपको दूं, बल्कि यूट्यूब पे तो बहुत कॉमन है वो लेक्चर। खट्टे मीठे रिश्ते, खट्टी मीठी चाट क्यों खाते हैं, कभी खट्टी कभी मीठी, खाली चीनी डालने, खाली नमक डालने, खाली नींबू डालने, नहीं चलता ना। तो चाट में देखे तो ससुराल भी खट्टा मीठा होता है, कभी अच्छी लगती बात, कभी बुरी लगती, कभी आप कुछ कह देते, लेकिन वो आपकी पहचान है बस। और कुछ ना समझ आए तो एक जुमला अपने शौहर के लिए लिख लें कि आपकी सास से आपकी मोहब्बत की सिर्फ एक वजह आपका शौहर है, कि इस माँ ने इस बच्चे को जना, फिर दूध पिलाया, फिर पाला पोसा, उसके लिए रातों को जागी, सुबह में बैठी, कुरान सिखाया, उसका पूरा एक करियर बनाया, और आज पाल पोस के आपको दे दिया। ये आपके हाथ में जो कुछ अपने शौहर की तरफ से अता कर देना, तो ये पीछे उस औरत की मरहूने मिन्नत है। तो दिलों से खुर्च दीजिए नफरतों को। फिर आगे देखिए आयत नंबर 55, वयाबुदून मिन दून इल्लाही मा ला यनफउहुम वला यदुर्रुहुम। अब यहाँ इनकी अकीदे की इस्लाह की जा रही है, ये अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो ना तो इन्हें कोई नफ़ा दे सके ना नुकसान पहुँचा सके, और काफिर तो है ही अपने रब के खिलाफ शैतान की मदद करने वाला। हमने तो आपको खुशखबरी और डर सुनाने वाला नबी बनाकर भेजा है, कह दीजिए कि मैं कुरान के पहुँचाने पर तुमसे कोई बदला नहीं ले रहा, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ राह पकड़ना चाहे। इंट्रो में बताया था आपको कि कुरान पढ़ाने का मुआवजा लिया जा सकता है, यहाँ दी बेस्ट मुआवजा बता दिया अल्लाह ने, और वो क्या है कि तुम मेरे लिए सदका जारिया बन जाओ। शायद आपको इतनी जल्दी में इसका तर्जमा समझ ना आए, आयत 57 को हाईलाइट कर लें। इसका मफहूम पता क्या है, कुल मा सअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तोहफा ना तहाइफ ना दुआएं ना फूल ना तारीफें, मुझे बस एक ही चीज तुमसे चाहिए, क्या? और आप सबसे चाहिए, और वो क्या है, इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। और मैं आप सबको भी गवाह बनाकर वर्ल्ड वाइड जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही कहूंगी कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई तोहफा नहीं चाहिए, कोई फूल पे भी 10 रियाल ना लगाए, कोई एक पैनी की चीज से लेके 1 लाख 1,000 की चीज भी मेरे लिए ना लाए, क्योंकि ये चीज मुझे तकलीफ देती है, मेरे लिए बोझ होता है, मुझे मुश्किल होती है। हाँ, आप मुझे एक तोहफा देना चाहें तो यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, अपने रब से जुड़ जाए, आप मेरा सदका जारिया बन जाए, आप हम सबका सदका जारिया बन जाए जो इस पैगाम को अब तक पहुँचा रहे हैं। हमारे एडमिन्स, हमारी एडिटिंग टीम, हमारी रीडिंग मटेरियल की टीम, हमारी सारी चीज़ों की टीम्स, क्या नाम लो, किसका लूँ किसका ना लूँ, पीछे एक पूरा इंजन होता है फिर गाड़ी चलती है। और मैं उन सबको भी दुआ दूंगी कि अल्लाह ताला उन सबको अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, और उनके शौहर जो उनके मुआविनीन हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी उनको सदका जारिया बनाए। इससे ज़्यादा एक उस्ताद कुछ नहीं चाह सकता, और उस्ताद को तोहफा देना उस्ताद की इंसल्ट करना होता है, ये मैं आपको सच बता दूँ, बिल्कुल 100% पूरे शरह सदर से कह रही हूँ, कोई फतवा नहीं दे रही, जायज़ नाजायज़ की बात नहीं कर रही। तोहफा जो होता है वो तहादू और तहाबू होता है, फिर टू वे होता है, एक्सचेंज करता है बंदा। अगर उस्ताद देता है ना तो फिर आप दीजिए, कोई ताल्लुक है तो दीजिए, लेने के साथ देना होता है। और अगर सिर्फ इसलिए नजराने तोहफे मोहब्बत, ठीक है इजहार, किसी को बहुत शौक है, आप नूर कुरान को दे दीजिए। इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हर वक्त चलते हैं, ये कुरान का जिहाद ऐसे थोड़ी हो रहा है, कितने तो आपके जूम रूम्स हैं और कितने आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं, और जो एबीसी है उस पर डाल दीजिए, स्पॉन्सर करते हैं किसी को, मस्जिद फंड में डाल दीजिए, जहां आपको जरा सदरा डाल दें, हमारे nurupran.com/ पे मेरा लिए रिवॉर्ड के नाम पर एक लिंक होता था, अब तो मुझे मुद्दा तो ही पता ही नहीं है भी कि नहीं, जहां दिल करता डाल दें, लेकिन मुझे कुछ ना कोई दे। स्कूल के लिए भी कुछ देना होता है तो लिफाफे पे लिख के उसको बंद करके अपने नंबर के साथ एडमिन को पकड़ा दिया करें। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जो हमारी जिंदगी का स्टाइल है, हमें तो एक बस हाथ वाला सामान चाहिए, वो भी जो कंधे पे आ जाए, हाथ में भी ना पकड़ा, बाकी सिर्फ बोझ होता है। वो मोहब्बतें होती हैं, फेंक भी नहीं सकते, जाया भी नहीं करने को दिल करता, और अल्लाह का शुक्र है कि कभी शाजो नादर किसी ने अगर कोई तोहफा दिया भी है ना, तो उसको उधर ही खपा दिए। आप सबको भी कहती हूँ, अगर किसी को कुछ भी चाहिए होगा तो इधर ही ले लीजिएगा, कोई चीज हुई आखिरी दिन में, किसी दिन में, कोई भी कोई ऐसी चीज हो, कोई गिफ्ट आता है हम उसको टेबल पर रख के उस पर कीमत लगाते हैं कि भाई आप इसकी कीमत देखिए, डाल दीजिए वो अल्लाह के रस्ते में, कोई कपड़ा, कोई फूल है, फूलों को भी हम सेल कर देते हैं कि क्या फायदा, ऐसे दिया तो लोग फेंक देंगे, माले मोह तिले फिर हैं, और जिसने खर्च किया उसको भी तो कुछ रिवॉर्ड मिले। आप कहते हैं आप आगे से दे दें, मुझे कहते हैं कोई ना तो आप आगे दे दें, तो मैंने कहा कि जिसने दिया उसको क्या फायदा होगा, फिर असल बात जो समझानी है, इस वक्त मुंह पे बात आई है तो बात लंबी कर रही हूँ ताकि एक ही दफा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारी हर चीज अल्लाह की है, जो है जिंदगी में वो भी, जो नहीं है वो भी, बाद में भी उसकी का है, तो क्यों बोझ ले लेके फिरना। मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग बताने लगी हूँ, वैसे तो बाजारों में नहीं जाते ना, लेकिन आप जब मक्का जाते हैं आपको पता है कि टॉवर्स हैं, आप गुजरते हैं आते हैं जाते हैं, रास्ते में मार्केट हैं, इतनी लश पुश किस्म के ब्रांड्स हैं, अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है, किसी को सच्चाई साबित करने की कोई ना जरूरत है ना वजह। जैसे खाना खा के पेट भरा हो तो दिल नहीं करता ना, इस तरह दुनिया से पेट भरा हुआ है, अल्लाह ने शुरू से बहुत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जिंदगी में कोई कमी नहीं मिली, अल्लाह ने अपने घर से इतना दिया हुआ, लेकिन दिल नहीं करता एक रियाल की कोई चीज को ले, कहाँ से 200 400 500, ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि तलब नहीं है। तो जब हम इन दुनिया की चीजों में बहुत पड़ जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, कार्य रसालत में रुकावट आती है, काम है ना, भागना है ना तो खाली हाथ अच्छा लगता है, जरा सा बैग उठा लेंगे तो चलेंगे, और अगर आप कोई 15 किलो का बैग पकड़ लेंगे तो आप रेंगेंगे और हाय हाय करेंगे। आज हम क्यों नहीं दीन की तरफ जाते, हम ख्वाहिश और तमन्नाओं के बावजूद दीन का काम क्यों नहीं बहुत भाग भाग के करते, थोड़ा सा करके हम थक क्यों जाते हैं, एक दिन करके दूसरे दिन हम ढीले क्यों पड़ते हैं, उम्रा कर लेते हैं तो हमसे सुबह को रात में नहीं आया जाता, रात सफर कर लें तो हमसे ये नहीं होता, वजह सिर्फ ये कि हमारे हाथ बंधे हुए, दोनों हाथों में हमने दुनिया पकड़ी हुई है। और आपने कुरान का मुझसे देखे, आप में से कौन कह रहा है आजकल उमरा किया आपने, कितनी थकन कितनी तकलीफ हो, इस वक्त आपको लग रही, चाहे कोई 200 किलोमीटर की रफ्तार से भगवाले भागने को तैयार हो जाएंगे, यही बात है, कुरान एक एनर्जी देता है, लिहाजा इस सारी चीजों के अंदर क्या करें, आप जरा अल्लाह का सुनिए, और अब इसके बाद रुकू आखिरी शुरू होगा तो उसमें बहुत ही प्यारे तरीके से अल्लाह ताला अपने बंदों की नस्बत हमें देगा। व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, अब नबी सल्लम की मुखालफतों को जहन में लाइए, घर घर आपके खिलाफ बातें हो रही हैं, आपके मिशन से लोगों को दूर किया जा रहा है, तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, ए नबी आप क्यों डरते, ये क्या कर लेंगे, ये अबू जहल की क्या औकात है, ये उतबाउ तैबा शैबा रबिया, ये इनकी क्या औकात है, व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, इस हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें जिसे कभी मौत नहीं, और इसकी तारीफ के साथ पाकीजगी बयान करते रहें, वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। नोट करें, प्यार नहीं दिखा, हम कहते हैं हमारी नेकियों को अल्लाह जानता है, अल्लाह कहता है ना ना मैं तुम्हारे गुनाहों से उससे भी खबरदार हूँ, लोगों को अपने गुनाह ना बताया करो, इससे ज्यादा भी कोई आपसे प्यार करेगा, नबी को भी तसल्ली है, आज आपको मुझे भी इसमें तसल्ली है कि जब मुखालफतों का तूफान खड़ा हो तो अल्लाह के ताल्लुक की रस्सी को और मजबूती से थाम लो। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, वही है जिसने आसमानों और जमीन और इनके दरमियान की सब चीजों को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ, वो रहमान है, आप इसके बारे में किसी जानने वाले यानी खबरदार से पूछ लीजिए, इनसे जब भी कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो जवाब देते हैं रहमान क्या है, देखिए एटीट्यूड, कहते ये अल्लाह क्या होता है, रहमान क्या होता है, क्या हम इसे सजदा करें जिसका तू हमें हुक्म दे रहा? और इस तबलीग ने इनकी नफरत में मजीद इजाफा कर दिया। मजाक करते थे, नाउसुबिल्ला। बताओ इनको अल्लाह कौन है? तबारक अल्लज़ी जाला फिस्समाई बुरूजा, बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें आफ्ताब बनाए और मुनव्वर महताब भी, और इसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। इस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता हो। है इरादा? किस किस का इरादा शुक्रगुजारी का? तो फिर आइए एक चेकलिस्ट अब्दुर रहमान के नाम की, इसको अपनी जगह पे लेके सोचिएगा और सुनिएगा। बड़ा मारूफ रुकू है और ये है तामीर सीरत, मिशन रिसालत को पूरा करने के लिए। यहाँ समझ लीजिए पारे का थीम, जरा सा दोहरा लेते हैं। कार्य रिसालत एक मिशन है, या रिसालत एक मिशन है, उसको फुलफिल करने के लिए जो किरदार मतलूब है, दावत इल्लाह का काम करने वाले और ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा से जो किरदार मतलूब है वो ये है। जैसे पिछले पारे में आपने सुना जन्नतुल फिरदौस का दाखला फॉर्म, अच्छा लगा था? फिल किया? कोई खाने खाली है अभी तो सही कर दे। ये इबादुर रहमान अब आपको क्वालिफाई करवा रहा है किसके लिए? टॉफल के लिए, यूएसए के वीजे के लिए जी? किसके लिए? कार्य रिसालत के लिए। अल्लाह के दीन का काम करे कोई तो पहले अपने अंदर ये खूबियां लाए, अदरवाइज तो वो दीन को बदनाम कर देगा।